بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. देखो, कल बात चल रही थी तकब्बुर का इलाज, तकब्बुर की अकसाम, तकब्बुर के कई किस्में हैं, इतनी है कि उसको गिन भी नहीं सकते, और अक्सर उनमें से बहुत बारीक किस्म है जिसको मुहक्किक ही पता लगा सकता है, हर एक को पता भी नहीं चलता। फिर बात चली थी कि किबर के मुख्तलिफ इलाज हैं। तकब्बुर तो हर एक में है, लेकिन इलाज हर एक का मुख्तलिफ होता है। उसके बारे में किस्से थे, किसी को जूते सीधे कराया, किसी को ऐलान करवाया कि भाई मेरे अंदर तकब्बुर है, दुआ करो तुम लोग, अल्लाह ताला मुझे इससे नजात अता फरमाए। तो अब उसी के किस्से चल रहे थे। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का वाकया जी। हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जब नए नए दर्स से निजामी से फारिग हुए, यानी मदरसे से जब पढ़कर फारिग हुए और आलिम बन गए, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि ये इल्म तकब्बुर पैदा करने का बहुत बड़ा जरिया होता है, इल्म से भी तकब्बुर पैदा होता है। इसलिए कि आलिम बनने के बाद दिमाग में ये बात आ जाती है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अभी आजकल तो बाकायदा आलिम नहीं बनते, फिर भी कहते हम आलिम बन गए। तो जो बाकायदा पढ़ लिया है, जिसने सर्टिफिकेट ली है, तो उसका फिर क्या आलम होगा। तो उसके दिमाग में आ जाता है, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, मुझे बहुत कुछ आता है। बहरहाल हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह हमारे तुम्हारे जैसे आलिम नहीं थे कि बस कच्चे पक्के पढ़कर आलिम बन गए, बल्कि बहुत जय्यद आलिम थे। उनकी इस्तेदाद बड़ी पुख्ता थी। उस वक्त थाना भवन की खानकाह में तीन बुजुर्ग बैठते थे। थाना भवन एक गांव है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का। तो थाना भवन की खानकाह में तीन बुजुर्ग बैठते थे, एक हजरत मौलाना शेख मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरे हजरत हाफिज जामीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उनको अकताबे सलासा कहा जाता था, एक कुतुब थी, तीन कुतुब थे, उनको अकताबे सलासा कहा जाता था। ये तीन अउलिया अल्लाह खानका में बैठे हुए थे। तो उनमें से हजरत मौलाना शेख मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह आलिम थे। उनका एक रिसाला हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की नजर से गुजरा, उनका एक रिसाला, वो आलिम थे। बाकी एक हाफिज जामिन साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हाजी मदादुल मक्की, ये आलिम नहीं थे, लेकिन अल्लाह वाले थे, कुतुब थे। कुतुब का नाम तो सुना, एक अब्दाल होता है, एक कुतुब होता है, अब्दाल से भी ऊपर। तो फरमाया उनका एक रिसाल हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की नजर से गुजरा। इस रिसाले में कोई ऐसी बात लिखी हुई थी जो इल्मी तौर पर हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को सही मालूम नहीं हो रही थी। चुनांचे उन्होंने इरादा किया कि हजरत मौलाना शेख मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह से इस मसले पर मुनाजरा करूं। उनकी किताब थी, शेख थे। तो अब मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह अभी नए नए आलिम बन के निकले थे, उनकी किताब में उनको कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने सोचा लाओ मैं उनसे जाकर बहस करूंगा। चुनाचे मुनाजरा की नीयत से गंगो से थाना भवन की तरफ रवाना हुए, गंगो से थाना भवन की तरफ रवाना हुए। ये यूपी के अंदर गंगो भी एक गांव है जो आज भी है, थाना भवन भी एक गांव है। कभी इंडिया ले जाए आपको केनिया वाले, तो जरूर इन जगहों पर जाना, ताकि जो पड़ी हुई जगह है तो उस वक्त याद भी आएगी। और बाकी हिंदुस्तान में रहने वाले तो देख रहे होंगे, देखा भी होगा। खैर, तो मालूम नहीं, तो गंगोई रहमतुल्ला, अच्छा गंगो से थाना भवन की तरफ रवाना हुए। जब थाना भवन पहुंचे तो चूंकि पहले हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का कमरा था, हजरत हाजी साहब से पहले शनासाई थी, हाजी साहब हाजी इमदादुल्ला मक्की, और उनसे पहले से पहचान थी। तो पहले उन्हीं का कमरा था, रूम था, इसलिए सलाम करने के लिए हाजी साहब के पास रुक गए। तो हजरत हाजी साहब ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहा कि शेख मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? तो कहा, उनसे मुनाजरा करना है। तोबा 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 तोबा, वो इतने बड़े आलिम और तुम अभी नए नए फारिग हुए हो और अभी अभी मौलवी बने हो और इतने बड़े आलिम से मुनाजरा करने जा रहे हो? अच्छा, जो अल्लाह वाले भी है, फिर वो तो अल्लाह वाले भी है। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ने अर्ज किया कि हजरत, उन्होंने एक रिसाले के अंदर ऐसी गलत बात लिख दी है। हजरत हाजी साहब ने हजरत मौलाना को ठंडा किया, मौलाना रशीद अहमद साहब को ठंडा किया, और उसी ठंडा करने में अल्लाह ताला ने उनकी काया पलट दी। देखा, अल्लाह वाले होते हैं। तो अल्लाह वाला ने बस उन पर क्या तवज्जो दी, ठंडा किया और उनकी काया पलट दी। हाजी साहब की उन पर ऐसी नजर पड़ी कि मुनाजरा करने का जो इरादा था वो तो खत्म कर दिया, और वहीं हजरत हाजी साहब से बैत हो गए। बैत हो गए, क्या बात थी! देखा, एक ही नजर में काया पलट गई। ये होती है अल्लाह वालों की नजर, इसको कहते हैं नजर लग गई, अच्छी नजर लगी कि क्या इरादा करने जा रहे थे और क्या बन गए। फिर क्या हुआ? बैत तो हो गए, फिर 40 दिन वहीं रहे। हालांकि जब गंगो से चले थे तो उस ख्याल से चले कि थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा, इस नियत से चले थे। इसलिए कोई कपड़ा वगैरह भी साथ नहीं लिए थे, बल्कि जो जोड़ा पहनकर आए थे उसी को धोकर सुखाकर दोबारा पहन लेते थे, और 40 दिन उसी एक जोड़े में गुजार दिए। जोड़ा लेकर तो आए नहीं थे, उसी को धोकर सुखाकर दोबारा पहन लेते, इस तरह 40 दिन वहां गुजार दिए। है कोई 40 दिन एक जोड़े में गुजारे? इस कयाम के दौरान हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खूब रगड़े खिलाए। अब उन्होंने रगड़े खिलाए, उसका नतीजा ये हुआ कि जब 40 दिन के बाद वापस जाने लगे तो हजरत हाजी साहब ने उनसे फरमाया कि मियाँ रशीद अहमद, कुछ मेरे पास अमानत थी, वो सारी मैंने तुम्हारे हवाले कर दी। ये कोई मामूली मकाम है कि शेख ये कहे कि जो कुछ मेरे पास था वो सब कुछ मैंने 40 दिन में तुम्हें दे दिया, अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम अता फरमाया था। देखा, ये क्या चीज दी है? अरे, उनके अंदर वो सॉफ्टवेयर फिट कर दिया जो हाजी साहब ने अपने पास था, है ना? ये सॉफ्टवेयर यही तो होता है, अल्लाह वालों के पास एक सॉफ्टवेयर है जी, उनके पास बैठोगे तुम्हारे अंदर फिट कर देंगे, फिर तुम्हारा गाड़ी तुम्हारी गाड़ी चलती जाएंगी जी। तो ये एक सॉफ्टवेयर था, तो वो उनके अंदर फिट कर दिया। बोले, जो कुछ था वो मैंने दे दिया, तो वही तो हुआ। तो वो उनके पास जो दिल की हालत थी वो दिल उनको दे दिया, बोले जो कुछ था अमानत सब दे दिया, फिट कर दिया। तो अभी कहा उनकी क्या कैफियत होगी होंगी। फिर जब आप वापस गंगो पहुंचे ना, तो एक अरसे तक अजीब इस्तेगराक की हालत तारी रही। इस्तेगराक, डूबे हुए थे कुछ सोच में, उसको इस्तेगराक कहते हैं। वो एक अजीब कैफियत तारी थी भाई, जाहिर बात है, सॉफ्टवेयर जब फिट करते हैं ना, और मशीन की इस्तेदाद नहीं होती है तो कभी हैंग हो जाता है। हाँ, तो इनके अंदर वो थोड़ा सा उसको फिट होने में टाइम लगा, इसलिए वो एक अजीब इस्तेगराक की कैफियत तारी हो रही थी, जो आज की साइंस तो सारी बातों को समझाने में आसानी हो गई, ये सब समझ सकते हैं। वो कैपेसिटी नहीं थी, अब 40 दिन के अंदर वो कैपेसिटी दे देना जो बरसों के बाद बनती है, तो जाहिर बात है अब उसमें थोड़ा सा तो वो होगा। तो वो उनको इस्तेगरा की कैफियत रही, हत्ता के बहुत अरसे तक हजरत हाजी साहब को रहमतुल्लाह अलैह को खत भी नहीं लिखा कई अरसे तक, क्योंकि एक गुम रहते थे। वो गुम रहते थे तो कई दिनों तक खत भी नहीं लिखा। तो हजरत हाजी साहब ने खुद खत लिखा कि मुद्दत से आ अजीज की खैरियत मालूम नहीं हुई, किस हालत में है, खत के जरिए अपने हालात से मुत्तला करे। तो शेख ने मुरीद को खत लिखा कि क्या बात है। तो बाद मरतबा शेख मुरीद को भी पूछता रहता है, भाई क्या हो, कुछ हो रहा है या नहीं, कुछ कर रहे हो, कुछ फायदा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए खत शेख अपने मुरीद को लिख रहा है। जवाब में हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ने लिखा, हजरत बहुत दिन से खत नहीं लिख सका, कोताही रही, लेकिन इसलिए नहीं लिखा कि अपनी हालत लिखते हुए शर्म मालूम होती थी कि क्या अपना हाल लिखूं। आपसे ताल्लुक भी हो गया, उसके बावजूद अपनी भी हाली को क्या लिखूं, इसलिए शर्म मालूम होती थी। अलबत्ता आपकी दुआ और तवज्जो से इतना फर्क जरूर मालूम होता है। अब वो उनसे बैत हुए, 40 दिन रहे और सारा उनको मुंतकिल कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा, वैसे तो शर्म मालूम होती थी, मैं क्या लिखूं, लेकिन इतना फर्क तो मैंने आपके पास जो बैठा हूं 40 दिन में, इतना फर्क तो मैंने जरूर मालूम किया। क्या? नंबर 1, शरीयत तबीयत बन गई। पहले जैसे आजकल हमारी शरीयत शरीयत है, तबीयत तबीयत है, इसीलिए आज हमारी शरीयत अलग है, हमारी तबीयत अलग है। जहां पर कोई ऐसी चीज आती है तो फौरन तबीयत गालिब आ जाती है और शरीयत छूट जाती है। तो इस्लाम नाम ही उसी का है कि तुम्हारी तबीयत को शरीयत बना दो, कि अब तुम्हारी हर हाल में शरीयत ही जिंदा होगा, तबीयत चलेगी ही नहीं। तो क्या हुआ, तबीयत यानी कि इंसान का मिजाज है, जैसे कम्युनिटी का एक मिजाज है, एक मेमनपन का एक मिजाज है, और इस तरीके से इंडियन का एक मिजाज है, अफ्रीकन का एक मिजाज है, और इस तरीके से दूसरी कौमों का एक अपना अपना मिजाज है, फिर उनकी अपनी अपनी तबीयतें भी होती है। तो शरीयत अलग करती है, तबीयत अलग है। तो हकीकत में दीन उसी को कहते हैं कि हमारी तबीयत को दीन के मुताबिक बना दो, और ऐसा बना दो कि किसी भी वक्त में हमसे जब निकले तो दीन ही निकले, तबीयत हमारी ना आवे। बात को जरा समझो, इस वक्त हमारी, वैसे हम दीनदार, लेकिन जरा कुछ हालात आए तो फौरन हमारी तबीयत उभर आती है। तो इसीलिए फरमाता था मौलाना अलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते थे कि अपने मिजाज को मिजाज नबुवत पर लाओ। नबुवत का मिजाज दावत का मिजाज था, मिजाज दावत पर लाओ, मिजाज नबुवत पर लाओ। जब नबुवत वाले मिजाज वाला बन जाएंगे तुम, तो फिर हर एक से तुम्हारा जोड़ होगा और किसी से तोड़ नहीं होगा। इसलिए कि नबवी मिजाज में, यानी नबवी तबीयत बना दो, नबवी तबीयत में हर एक से जोड़ होगा, तोड़ नहीं होगा। आज हमारी तबीयत अलग है और दीन अलग है, जिसकी वजह से तोड़ भी होता है, जोड़ भी होता है। तो फरमाया शरीयत तबीयत बन गई, इसको कहते हैं शरीयत तबीयत बन गई। आगे सुन, यानी जिस तरह इंसान के अंदर तबीयी तकाजे भूख और प्यास के होते हैं, और जब तक इंसान इन तकाजों को पूरा न कर ले, जब तक इंसान इन तकाजों को पूरा न कर ले, इंसान को उस वक्त तक चैन नहीं आता। इसी तरह शरीयत के तकाजों पर जब तक अमल न कर लू, उस वक्त तक चैन नहीं आता। इसको कहते हैं तबीयत, शरीयत तबीयत बन गई, शरीयत तबीयत बन गई। तो समझे, जिस तरीके से जिस्म के तकाजे होते हैं, ऐसे शरीयत के तकाजे होते हैं। तो शरीयत के तकाजे भी जब तक पूरे न कर लूं, उस वक्त तक चैन नहीं आता। हाँ, अब दूसरा क्या फायदा हुआ, फरमा मदह और जम यकसा हो गए। जब इंसान की बिगड़ी हुई तबीयत होती है ना, तो कोई तारीफ करे तो बहुत अच्छा लगता है, कोई बुराई बयान करे तो अंदर से गुस्सा आता है। इसको कहते हैं, फरमाया आपकी सोहबत में मैं रहा तो मुझे क्या फायदा हुआ कि कोई तारीफ करे या कोई बुराई बयान करे, सब एक हो गया। न तारीफ करने पर कोई अकड़ आती है, न कोई बुराई करने पर गुस्सा आता है, बल्कि उस पर से नजर ही हट गई कि तारीफ और बुराई सब एक, यानी तारीफ करने वाला और बुराई करने वाला दोनों बराबर हो गए। कोई तारीफ करे तो और कोई बुराई करे तो, दोनों के अंदर कोई फर्क मालूम नहीं होता। ताकि ये तारीफ कर रहा है और ये बुराई कर रहा है। न तारीफ से तबीयत में कोई हरकत पैदा होती है, न बुराई से तबीयत में कोई तगय्युर आता है। जी, तो पहला फायदा शरीयत तबीयत बन गई, दूसरा फायदा तारीफ और बुराई यकसा हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे अंदर फर्क पड़ता है, तारीफ करे तो अच्छा लगता है, बुराई करे तो बुरा लगता है। जब इसलाह होती है तो फिर इंसान के ये हो जाता है कि तारीफ, इसलिए इंसान अपना काम करता रहता है, फिर लोगों के पीछे नहीं पड़ता है, उनके जवाब देने के पीछे नहीं पड़ता, अपना काम करता रहता। और तीसरा, किसी मसले शरई में कोई इश्काल बाकी नहीं रहा। देखा ना, क्योंकि इश्काल होता है जब इश्क की कमी होती है, जब इश्क कामिल हो जाता है तो फिर सारे इश्कालात खत्म हो जाते हैं। जब ये खत थाना भवन में हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा तो आपने वो खत अपने सर पर रख लिया। अल्लाह अकबर, आपने वो खत अपने सर पर रख लिया, फरमाया कि ये हाल जो उन्होंने लिखा है ये तो अब तक हमें भी हासिल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, देखा का ये हाल जो उन्होंने लिखा है वो तो अब तक हमें भी हासिल नहीं हुआ। बहरहाल, कैसे शेख और कैसे मुरीद थे, ये ऐसे ही नहीं बन जाते, बल्कि कुछ रगड़े खाने पड़ते हैं। तो देखा, किसी मसले शरी में कोई इश्काल बाकी नहीं रहा, तीसरा नंबर। ये तीन चीजें मिली और उन्होंने लिखा खत में, तो हजरत ने क्या फरमाया, ओहो, ये तो पूरी शरीयत हो गई। उन्हीं 40 दिन के कयाम के दौरान ये वाकया पेश आया कि एक दिन हजरत हाजी साहब ने अपने मुरीद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया कि आज तुम हमारे साथ खाना खाओ। वो जब 40 दिन उधर थे ना, तो हमेशा एग्जाम होता है ना, क्योंकि ये भी तो एक कोर्स होता है, तो उसका भी एग्जाम है ये, लेकिन ये सारा कोर्स सॉफ्टवेयर है। एक तो आलिम बनना, उसमें तो सारा किताबें होती है, उसका एग्जाम होता है, और इसी तरीके से इंसान की अपनी इसलाह कराना, उसके अंदर भी एग्जाम होता है। तो ये 40 दिन रहे तो हजरत हाजी साहब के पास, तो हजरत हाजी साहब ने भी इम्तिहान के तौर पर क्या फरमाया, मां रशीद अहमद साहब को बुलाया कि आज तुम हमारे साथ खाना खाओ। चुनाचे खाने के वक्त तशरीफ ले गए, दस्तरखान पर सालन के दो प्याले थे, एक में कोफ्ता और एक में दाल थी। तो हजरत हाजी साहब ने कोफ्ते के सालन का प्याला तो अपने पास रखा और दाल का प्याला उनके सामने रख दिया। इशारा इस तरफ कर दिया कि दाल तुम खाओ, कोफ्ते हम खाएंगे। तो खाने के दौरान हजरत हाफिज जामिन साहब, बताया ना तीन बुजुर्ग थे, हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए खाने के दरमियान। तो हाफिज साहब ने फरमाया कि हजरत ये क्या आप कर रहे हैं कि खुद तो कोफ्ते खा रहे हैं और उसको तो दाल खिला रहे हैं। तीसरा नंबर है, किसी मसले शरई में कोई इश्काल बाकी नहीं रहा। यानी पहले कोई ना कोई हदीस, एक हदीस दूसरे हदीस से टकरा रही थी, एक आयत दूसरे आयत से टकराती थी, लेकिन जब से इन्होंने हाजी साहब के पास जाकर आए हैं कि अब कोई आयत से टकराती नहीं, हर एक का जवाब मिल जाता है। कोई हदीस दूसरी हदीस से टकराती नहीं, हर एक का जवाब मिल जाता है, तो उसको कहते शरीय मसले में कोई इश्काल बाकी ना। ना पहले इश्काल होता था कि एक हदीस में कहीं शरीयत इजाजत देती है, कहीं मना कर रही है, तो बोला ये क्या, तो वो सारे इश्काल खत्म हो गए। खैर, उसकी मिसाल शायद आगे आएगी कहीं। तो अब देखो, तो वो उन्होंने उनके सामने दाल डाल दी, रख दी, और खुद तो कोफ्ता खाया। हजरत हाफिज जामिन शाह बिबिल्ला वाले थे, पहुंच गए तो फरमाया ये तुमने क्या किया, उसको तो दाल खिला रहे। तो हजरत हाजी साहब ने फरमाया कि अरे ये तो मेरा एहसान है कि उसको अपने साथ बिठा कर खिला रहा हूं, हक तो ये था कि रोटी पर दाल रखकर हाथ में दे देता कि बाहर सीढ़ियों पर बैठकर खा ले। देखा, हजरत हाफिज साहब ने सिफारिश की तो फरमाया अब ये देखो, ये एग्जाम हो रहा है ना, इनका पता भी नहीं चल रहा है एग्जाम हो रहा है, क्योंकि ये सारा एग्जाम चेहरे से हो रहा है, इसमें कोई राइटिंग नहीं है, सारी दिल की कैफियत है। ये अल्फाज कहने के बाद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे की तरफ देखा, क्योंकि अल्फाज बहुत खतरनाक थे। कहे भाई ये तो मेरा एहसान है कि उसको अपने साथ बिठाकर खिला रहा हूं, हक तो ये था कि रोटी पर दाल रखकर हाथ में दे देता कि बाहर सीढ़ियों पर बैठकर खा ले। ये अल्फाज कहने के बाद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे की तरफ देखा कि इस बात से उनके चेहरे पर कोई तगैयुर आया या नहीं। कैसा कैसा एग्जाम में देगा, ये भी एक इम्तिहान होता है, दिलों का इम्तिहान, अजीब, जिसमें न कोई कलम है न कोई कागज है, इसमें चेहरा सामने होता है। तो फिर चेहरे पर कोई तगैयुर आया या नहीं, देखा कि कोई तगैयुर नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आई, मालूम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह किब्र की बीमारी निकल गई, पास हो गए, किब्र की बीमारी निकल गई। बहरहाल इस तरह रगड़े दिए जाते हैं तब जाकर इलाज होता है। हर एक के बस का काम नहीं कि वो अपने बारे में खुद फैसला कर ले कि मेरा क्या इलाज है। अब देखा इनका इलाज किब्र का कैसा किया, पहले तो एक किब्र का इलाज बताया कि मस्जिद में नमाज के बाद खड़े होकर ऐलान करो मेरे अंदर तकब्बुर है और दुआ करो कि अल्लाह मेरे अंदर से बीमारी निकाल दे। और दूसरे हजरत आए, उनको कहा मस्जिद में जूते सीधे करो। और ये तीसरे को उन्होंने क्या दिखाया, इनका इलाज अलग है, कहा कि ऐसी बातें कह दी जिससे गुस्सा आवे। उनके चेहरे को देखा, फरमाया नहीं, किब्र का इलाज हो गया, क्योंकि ये तो जा रहे थे ना बहस करने के लिए ना, और अब वो तो किब्र की वजह से बहस कर रहे थे, उसका इलाज कर दिया। शेख से इलाज तजवीज कराओ, खुद इलाज मत करो। खुद इलाज करने जाओगे, जिस्म का इलाज भी खुद करने जाओगे तो बीमारी ज्यादा बढ़ेगी, डॉक्टर के जरिए से करेंगे तो सेहत अच्छी मिलेगी। ऐसे ही रूहानी बीमारियां जो है तो उसका भी इलाज डॉक्टर से कराएंगे, रूहानी डॉक्टर से कराएंगे तो बहुत फायदा होगा। एक साहब हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया करते थे, यानी हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया करते थे। वो अपना इलाज खुद तजवीज कर लिया करते थे, खुद ही करते थे, और खुद ही फैसला कर लिया कि मेरे अंदर तकब्बुर की बीमारी है। खुद फैसला किया कि मेरे अंदर तकब्बुर की बीमारी है और फिर खुद ही अपना इलाज तजवीज कर लिया। तो एक मरतबा हजरत वाली साहब ने उनको पकड़ लिया और फरमाया कि इस तरीके से तुम्हारा नफ्स और ज्यादा मोटा हो रहा है और तुम्हारे अंदर और ज्यादा तकब्बुर बढ़ रहा है, इसलिए हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि इस तकब्बुर की बेशुमार किस्में हैं, हर एक का हुक्म अलग है, हर एक का इलाज अलग है, इसलिए इसके इलाज के लिए उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि अपने आप को किसी शेख के हवाले कर दो। वो शेख पहले ये देखेगा कि तकब्बुर है या नहीं, क्योंकि बाज औकात हकीकत में तकब्बुर नहीं होता बल्कि तकब्बुर का शुबा और धोखा होता है। बाज औकात तकब्बुर होता है मगर उसे तकब्बुर नहीं समझा जाता, इसलिए शेख पहले तशखीस करेगा, टेस्ट करेगा कि इसके अंदर तकब्बुर है या नहीं। जैसे हम खून का टेस्ट कराते हैं ना, ताकि उसे पता चले कि इसमें क्या क्या बीमारी है या नहीं है। नॉर्मल आया तो बोले नहीं आपको कोई बीमारी, ऐसे ही शेख भी टेस्ट करता है कि तुम्हारे अंदर तकब्बुर है या नहीं। अब वो शेख जानता है उसका टेस्ट का उसका कैसे करना है, तो फिर उससे पता चल जाता है कि इसके अंदर तकब्बुर है तो कितने दर्जे का है, कम है ज्यादा है, क्या बीमारी है, किस तरीके से उसको कौन सा इलाज दिया जाएगा, सब चीज होता है। तो पहले टेस्ट करता है, उसको कहते हैं तशखीस करेगा कि उसके अंदर तकब्बुर है या नहीं। तशखीस करने के बाद, टेस्ट करने के बाद वही उसका इलाज भी तजवीज करेगा। हत्ता के जो शख्स बजाहिर आलिम और फारिगु तहसील है, कुरान और हदीस और फिका और तफसीर सब कुछ पढ़ा हुआ है, एक आलिम जो कुरान हदीस फिका तफसीर सब कुछ पढ़ा हुआ है, बजाहिर तो सब कुछ जानता है, लेकिन ऐसे आलिम को भी शेखे मुहक्किक की तकलीद महज करनी पड़ती है। ऐसा आलिम जो पढ़ा हुआ है लेकिन अपने अंदर की बीमारी खुद नहीं पहचान सकता, उसको शेख के पास जो रूहानी स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, उसी के पास जाकर उसको कहते शेखे मुहक्किक की तकलीद, यानी उसके मुताबिक वो जो कहे उसके मुताबिक चलना, उसको कहते तकलीद करनी पड़ेगी। जब शेख ये कह दे कि तुम्हारे अंदर किब्र है तो समझ ले कि हाँ मेरे अंदर किब्र है, जी, और फिर उसका इलाज कराए। चू और चीरा की गुंजाइश नहीं, चू और चीरा यानी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं। शेख के सामने शेख ने कहा कि तकब्बुर है तो बस मान लो है, अब यह मत पूछो अच्छा है तो कैसे पता चला आपको मेरे अंदर तकब्बुर है कि नहीं है, अब यह मत करो, अब इलाज करो। कोई डॉक्टर से पूछता है? नहीं। टेस्ट बता दिया भाई, आपका टेस्ट बता रहा है कि आपके अंदर ये बिगाड़ है और ये जम से बीमारी, कभी ये नहीं पूछता भाई इसके दलाइल क्या, ये क्यों आए, कैसे हुआ, वो नहीं, बस दवा लो चले जाओ। ऐसे ही शेख ने बता दिया किब्र है तो बस अब मान लो और अब जो इलाज बताए चले जाओ, उसमें कुछ ज्यादा उसको कहते चू चीरा की गुंजाइश नहीं। अगर चू चीरा करेगा तो मारा जाएगा, क्योंकि फिर नुकसान होगा। यानी वो शागिर्द जो इल्म जाहिर हासिल कर रहा है, वो शागिर्द जो इल्म जाहिर हासिल कर रहा है, अगर वो चू चिरा न करे, यानी जो आलिम बन रहा है किताबों के जरिए, वो अगर चू चिरा न करे तो उसको बाहर निकाल दो। वो क्योंकि उसको तो करना चाहिए, जो किताबों से एक आलिम बन रहा है तो उसको तो किताब समझने के लिए, हदीस समझने के लिए, कुरान के आयत समझने के लिए, ये ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है और इसके मुकाबले में आयत है इसका क्या जवाब है, तो उसको तो करना चाहिए। तो फरमाया जो अगर इल्म जाहिर पढ़ रहा है यानी आलिम बन रहा है, या जो पढ़ रहा है कोई भी इल्म पढ़ रहा है, तो उसको सवाल न करे तो उसको बाहर निकाल दो। और वो शागिर्द बनने के लायक नहीं, उसका काम ही ये है कि समझने के लिए सवाल करे, जो शुबा पैदा हो जाए उसे पेश करे। और जो शख्स किसी शेख का मुरीद हो वो चू और चीरा करे कि ये आपने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो ऐसे मुरीद को जंगल भेज देना चाहिए। वहां चू चीरा न करे तो फरमाया निकाल दो, और यहां करे तो निकाल दो। तो देखा, वो इल्म अलग है, ये इल्म अलग है, वो भी सीखना है उसके बाद ये भी सीखना है। लेकिन इस इल्म को सीखने में शेख ने जो कहा वो मान लो, और उसके बाद जो बताया इलाज उसको मान लो और शुरू कर दो। तो फरमाए आपने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो ऐसे मुरीद को फिर जंगल भेज देना, निकाल दो, वो मुरीद बनाए जाने के काबिल नहीं है जो इतने सवाल आप करे। लिहाजा शागिर्द का वजीफा यह है कि चू चीरा करे और सवाल करे। जो शागिर्द सबक में खामोश बैठा है और कभी कुछ पूछता ही नहीं, वो अहमक है, बेवकूफ है, वो सबक का हक अदा नहीं कर रहा है। और मुरीद का काम यह है कि वो खामोश बैठे, और मुरीद का क्या है कि उसका काम यह है कि वो खामोश बैठे, वो चू चीरा न करे। वो अगर चू चीरा करता है तो उसका मतलब यह है कि उसके अंदर खराबी है। तो यहां पर खामोशी और वहां पर बोलना, तो देखा दोनों इल्म अलग अलग है। अल्लाह, इतना बड़ा फर्क है, क्योंकि ये पूरा का पूरा, इसलिए मैं कहता हूं वो हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है, इसको मैं इस मिसाल से देता हूं तो वो सारे समझ जाएंगे ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। लिहाजा जो आलिम जाहिर हो उसको इस बात की ज्यादा जरूरत होती है कि वो बिला चू चिरा शेख की बात को तस्लीम करे, इसलिए कि इल्म के अंदर खुद रफअत की शान मौजूद है, बुलंदी की। जी, क्योंकि इल्म के अंदर खुद बुलंदी की शान मौजूद है, लिहाजा जिस शख्स को इल्म हासिल हो जाता है उसके अंदर खुद ब खुद तरफ और बड़ाई का एहसास पैदा हो जाता है कि मेरे अंदर ये कमाल हासिल हुआ। इसलिए अक्सर व बेशतर इल्म के साथ तकबुर आ ही जाता है, इल्म के साथ तकबुर आ ही जाता है जब तक उसकी तरबियत न हो और रगड़े न खाए। इसलिए फरमाया कि देखो हार्डवेयर बगैर सॉफ्टवेयर के नहीं चलता, और सॉफ्टवेयर बगैर हार्डवेयर के नहीं चलता, ये तो आपको मालूम होगा जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, कि तुम सॉफ्टवेयर है उसको चलाओगे कहाँ जब तो हार्डवेयर की जरूरत पड़ी, और हार्डवेयर है तो उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की उसके अंदर विंडो डालना पड़ता है, विंडो के बगैर चलेगा नहीं। तो कंप्यूटर हो तो ये सारा उसके सारे जो जो पार्ट्स है वो सारे हार्डवेयर है। तो इसी तरीके इसी को कहते हैं इल्म और जिक्र। इल्म हार्डवेयर है, जिक्र सॉफ्टवेयर है, ये दोनों लाजिम मलजूम है, दो चीजें होगी जब जाके तीसरी चीज वजूद में आएगी। इसलिए अगर मदरसे से आलिम बने हैं तो अल्लाह वालों के पास बैठकर ये भी फिट कराना होगा और ये भी सीखना होगा, उसके बाद अल्लाह उनसे काम लेगा हिदायत का। जी अल्लाह अकबर। तो ये दोनों चीजें हैं, तो उसी को कहते हैं सादा अल्फाज में इल्म जिक्र, और साइंस के अल्फाज में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसी को अगर इल्मी जबान में कहोगे तो शरीयत और तरीकत कहते हैं। अब मेरे सबसे बड़े भाई यानी हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहम के जो बड़े भाई थे उनका नाम था भाई जकी। मेरे सबसे बड़े भाई मोहम्मद जकी कैफी मरहूम थे, जो शायर भी थे। बचपन में उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में काफिया और शेरे जामी तक किताबें पढ़ी पढ़ी थी। उसके बाद पढ़ना छोड़ दिया था, फिर तिजारत वगैरह में लग गए। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि भाईजान आपने तालीम मुकम्मल क्यों नहीं की थी, दरमियान में क्यों छोड़ दिया था। दरमियान में क्यों छोड़ दिया, जवाब में फरमाया कि बड़े मियाँ ने हमारा मामला खत्म कर दिया था। बड़े मियाँ ने, तो बड़े मियाँ से मुराद हजरत मियाँ सैयद असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मियाँ साहब के नाम से मशहूर थे, मियाँ साहब, और साहिब कशफ व करामत बुजुर्ग थे। मैंने फिर सवाल किया कि किस्सा हुआ था, क्या किस्सा हुआ था, क्या किस्सा हुआ था। तो फरमाने लगे कि एक मरतबा मैं घर से दारुल उलूम देवबंद पढ़ने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में हजरत मियाँ साहब का मकान था। हजरत मियाँ साहब घर में तशरीफ फरमाते और हमारे हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत का ये असर था कि ये नहीं हो सकता था कि मियाँ साहब के घर के पास से गुजरे और मियाँ साहब से सलाम करके दुआ करा के न जाए, ये नहीं हो सकता था। देखो उसातज़ा की अल्लाह वालों की कैसा अदब कि वहां से गुजरे तो बगैर सलाम के नहीं जा सकते, ये अदब होते। जब अल्लाह वालों की बस्ती से गुजरो तो जाहिर बात है उनसे मुलाकात करके दुआएं करके जाया करो। तो उनसे दुआएं करके जाया करो, तो ये फरमाती हो नहीं सकता कि हमको सलाम करके बगैर दुआ कराए कर न जाए। मैंने सोचा कि हजरत मियाँ साहब मौजूद हैं, चलो उनको सलाम करके दुआ करा लो फिर मदरसा जाओ। तो मियाँ साहब अपने पास बादाम वगैरह भी रखा करते थे, जब कोई बच्चा उनके पास मुलाकात के लिए आता तो उसको बादाम वगैरह भी दिया करते थे। बहरहाल मैं उनके पास गया और जाकर सलाम किया तो हजरत मियाँ साहब ने जवाब दिया। फिर मैंने दुआ की दरखास्त की, हजरत मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इल्म अता फरमा दे। तो बड़े मियाँ ने जवाब दिया, भाई ना, इल्म बड़ी खराब चीज है। क्या बोला भाई ना, तो फरमाया मुझे इल्म अता, आप दुआ करो अल्लाह ताला मुझे इल्म अता फरमा दे। तो बड़े मियाँ ने क्या कहा कि भाई ना, इल्म बड़ी खराब चीज है, मैं तुम्हारे वास्ते दुआ नहीं करता। आज अगर कोई ऐसा कह दे तो ओ हो, ये कैसे कैसे अल्लाह वाले हैं। देखो अल्लाह वाले थे, बड़े कशफ करामत वाले थे। तो फरमाया बड़ी खराब चीज है, तुम्हारे वास्ते दुआ नहीं करता। मैं बड़ा परेशान हुआ कि अल्लाह ये फरमा रहे कि इल्म बड़ी खराब चीज है। फिर अपने बारे में फरमाने लगे कि मियाँ साहब पहरे दारुल उलूम में, पहले दारुल उलूम में मोलसरी के दरख्त के नीचे फटी पुरानी चटाई पर बैठा करता था। खुद कहने लगे मोलसरी के दरख्त के नीचे, वहां एक दरख्त था उसके नीचे फटी पुरानी चटाई पर बैठा करता था और अब चौकी पर बैठकर पढ़ता है। मियाँ साहब पहले दारुल उलूम में, फरमाया अब चौकी पर बैठकर पढ़ाता है, और अब मियाँ साहब से कहो कि नीचे बैठकर पढ़ा दो तो मियाँ साहब के मिजाज में फर्क आ जाता है, मियाँ साहब के मिजाज में फर्क आ जाता है। मियाँ इल्म तो तकब्बुर पैदा करता है, क्या फरमाया, मियाँ इल्म तो तकब्बुर पैदा करता है, इस वास्ते मैं तुम्हारे वास्ते इल्म की दुआ नहीं करता। अजीब भाई जान कहते हैं कि मुझे उसी दिन खतरा हो गया था कि बड़े मियाँ ने हमारा तो पत्ता साफ कर दिया, अब ये इल्म पूरा होने वाला नहीं। बहरहाल वो तो साहिब कशफ करामत बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला ने उन पर मुनकशी फरमाया होगा कि इस इल्म की तकमील इनके हक में मुकद्दर नहीं है, इसलिए मुनासिब तरीके से बच्चे को बता दिया। इसलिए देखो, हर इल्म के पढ़ने के काबिल नहीं होता है जी, इसलिए हमेशा अल्लाह वालों से मशवरा लिया करो कि भाई इस बच्चे को मैं क्या बनाऊं, इसको आलिम बनाओ, उसको डॉक्टर बनाओ, उसको हाफिज बनाओ, उसको क्या बनाओ। वो जान लेते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों पर खोलते हैं। तो देखो ये तो उन्होंने देख लिया कि इसको पूरा आलिम बनने, हालांकि उनके वालिद तो बना रहे थे, लेकिन उन्होंने देख लिया कि इसके अंदर इस्तेदाद नहीं है, तो उन्होंने उसको मुनासिब तरीके से बच्चे को बता दिया। लेकिन बात जो इरशाद फरमाई वो ये थी कि इल्म तकब्बुर पैदा करता है, लिहाजा अगर इल्म की वजह से तकब्बुर पैदा हो गया तो फिर इस इल्म से हजार दर्जा बेहतर यह था कि आदमी जाहिल रहता। अगर इल्म की वजह से तकब्बुर पैदा हो गया तो फिर उससे बेहतर यह था कि आदमी जाहिल रहता। देखो, जाहिल रहता और एक दिन और एक अनपढ़ देहाती की तरह जिंदगी गुजारता तो कम अज कम अल्लाह ताला के यहां जाकर इल्म की तकब्बुर बड़ाई का अजाब न होता। इल्म तो पढ़ा लेकिन साइड इफेक्ट हुआ, अब साइड इफेक्ट क्या हुआ, तकब्बुर आया। तो इस साइड इफेक्ट को निकालने के लिए फिर अल्लाह वालों के पास जाना पड़ता है, क्योंकि इल्म तो पढ़ना है, जरूरत का इल्म तो उस पर तकब्बुर नहीं आएगा, याद रखना, जरूरत के इल्म में तकब्बुर नहीं आएगा क्योंकि वो फर्ज है। और बाकायदा आलिम बनना जो नफल इल्म होता है, जो फर्ज किफाया होता है, तो फरमाया उसको पढ़ने से तकब्बुर आता है। तो ये तकब्बुर वो आता है, उसके लिए फिर इलाज करना पड़ता है, वो इलाज कराएगा तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगा जी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया अगर एक अनपढ़ देहाती की तरह जिंदगी गुजारता तो कम अज कम अल्लाह ताला के यहां जाकर इल्म की इस तकब्बुर बड़ाई का अजाब न होता। इसलिए इल्म के साथ अक्सर और बेशतर ये चीज जमा हो जाती है और उसका हल उसके अलावा कोई और नहीं कि अपने लगाम किसी के हवाले करे। वो ये देखे कि क्या बीमारियां इसके अंदर पैदा हो रही है, जो बीमारियां पैदा हो रही है उनका इलाज करे। इसलिए अपने लगाम क्या करो, अपने आप को दूसरे के सुपुर्द कर दे, वो हमारा इलाज करेंगे। क्योंकि ये चीज तो आने वाली है इंसान के अंदर, कोई भी इल्म सीखे, चाहे वो दुनिया के उलूम सीखे, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का और किसी का, जो भी इल्म सीखेगा उसके अंदर ये बीमारी जरूर आएगी तकब्बुर की। अब तकब्बुर की बीमारी का इलाज उसको फिर दूसरी जगह जाके कराना होगा। तो हमारे हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये इल्म दो धारी तलवार है, तलवार होती है जिसकी दोनों साइड पर तलवार हो, दो धारी तलवार है। अगर अल्लाह ताला इस इल्म में नूर अता फरमा दे, उसमें बरकत अता फरमा दे, उसको नाफे बना दे, तो फिर सुभान अल्लाह ये इल्म क्या अजीब गरीब चीज है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस इल्म में नूर और बरकत न हो, उसमें नाफियत न हो और इंसान को किब्र और घमंड में मुब्तला कर दे, तो फिर इस इल्म से ज्यादा मोहलिक चीज भी कोई नहीं है। हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जितनी मुरग्गन और शानदार और मजेदार गिजा होती है, जितनी मुरक्कन और शानदार और मजेदार खाना होता है, सड़ने के बाद वो उतनी ही ज्यादा बदबूदार बन जाता है। अगर मामूली खाना है जिसमें तेल वगैरह नहीं है तो उसके सड़ने से थोड़ी बहुत बदबू पैदा होगी, लेकिन तेल वाला रोगन गिजा सड़ने के बाद सारे मोहल्ले को बदबूदार कर देगी। इसी तरह जितने ऊंचे से इंसान गिरता है उतनी ही चोट ज्यादा लगती, जितनी ऊपर से गिरेगा उतना चोट ज्यादा लगी। इसी तरह यह इल्म अगरचे आला दर्जे की चीज है, लेकिन अगर ये खराब हो जाए और इंसान को तकब्बुर और घमंड में मुब्तला कर दे तो ये इल्म इंसान के लिए उतना ही मोहलिक है। इसलिए खास तौर पर आलिम को इस बात की ज्यादा जरूरत है तो किसी से अपनी इसलाह कराए, तो किसी से अपनी इसलाह कराए जी। अल्लाह, वैसे तो हर एक को जरूरत है लेकिन खास करके आलिम को बहुत ही जरूरत है, कि उसके पास एक चीज तो है, एक चीज और आएगी तो काम हो जाएगा। शैतान का एक वाक्या है। मैंने अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि किसी शख्स ने ख्वाब में शैतान को देखा कि वो बहुत सारी गठरिया अपने कमर पर उठाए ले जा रहा है। गठरिया जैसे बंजारा एक शहर से दूसरे शहर सामान उठाकर ले जाता है और बेचता है, यानी गठरिया बोलते हैं तो छोटे छोटे बॉक्स समझो या छोटे छोटे थैले समझो कि वो उठाकर ले जाते हैं ना इंसान, अलग अलग थैले में अलग अलग बैग में अलग अलग चीजें होती है। तो सामान जो बेचने वाले होते हैं ना घर घर जाने वाले, वो दो चार थैले साथ में रखते हैं, तो उसको उर्दू में कहते हैं गठरिया। तो फरमाया शैतान सामान ले जा रहा था, अब गठरियों को देखा, गठरिया अपनी कमर पर उठा के ले जा रहा था, अलग अलग गठरिया थी। हाँ, तो अब बेचता है, इसी तरह वो भी सामान ले जा रहा है, अब गठरियों को देखा तो किसी गठरी में क्या था, पाखाना भरा हुआ है, शैतान लेके जा रहा था, तो किसी में गोबर भरा हुआ है, लीद है, और किसी में पेशाब भरा हुआ है। तो उसने शैतान से पूछा कि ये सब क्या है। शैतान ने एक गठरी की तरफ इशारा करके कहा कि ये तकबूर है, समझे ना, तो ये तकबूर है, और दूसरी गठरी की तरफ इशारा कहा कि ये हुब्बे जाह है, और किसी की तरफ इशारा करके कहा ये हसद है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब चीज नजासतों की शक्ल में थी। तो उन साहब ने फिर शैतान से पूछा कि उनको कहां ले जा रहा है। जी, कहा उनको कहां ले जा रहा है। तो शैतान ने जवाब दिया कि उनको ले जाकर फरोख्त करूंगा। शैतान ने पूछा कि क्या उनको ले जाकर फरोख्त करूंगा, बेचूंगा। उन साहब ने फिर पूछा कि पैसे देकर तुझसे नजासतें कौन खरीदेगा, पैसा देकर कौन खरीदेगा। शैतान ने जवाब दिया कि अपने माल की मंडी मैं जानता हूं, फरमाया मेरा माल है और मैं उसको बेचना जानता हूं, तुम छोड़ो अपनी बातें, और उसका ग्राहक और खरीदार को मैं जानता हूं कि कौन लेगा। ये तकब्बुर और हुब्बे जा, ये दो नजासतें मैं मौलवियों के पास जाकर बेचूंगा, कौन लेगा, मौलवी लेगा। तकब्बुर और हुब्बे जा ये तो वो लोग खरीदेंगे, वो उन दोनों के बड़े शौकीन हैं, उनको बड़ा मजा आता है, उनको उन दोनों के खाने में बड़ा मजा आता है। हुब्बे जा का क्या मतलब, हुब्बे जा के माना है शोहरत, के लोग मेरे आगे झुके, लोग मेरे मोतकीद बने, मुझे माने, लोग मेरी तारीफ करे, मेरी शोहरत हो, ये सब हुब्बे जा है। हुब्बे जा को बेचने के सबसे बेहतरीन मार्केट मौलवी साहिबान है जी, वहां जाकर उसको बेचूंगा, वो खूब मजे लेकर उसको खाएंगे। बहरहाल ये इल्म एक तो बजाते खुद फी नफसी ही तालिबे उलू है। बस यहां पर ही रखते हैं इंशाल्लाह इसके बाद कल आगे थोड़ी देर मुलाकात कर लें।